ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन प्रविधि की वैकल्पिक शिक्षा के अभियान का किया शुभारंभ। सभी विद्यार्थियों से इस अभियान में सहभागी होने का प्रधानमंत्री ओली ने किया आग्रह। सातों प्रदेशों के प्रदेश सभा की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का वार्षिक बजट किया गया प्रस्तुत। देश भर में 451 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 6211 पहुंची। और यूरोप में 3 माह बाद खुली सीमाएं। इटली व स्पेन ने भी किए कई ऐलान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वैकल्पिक शिक्षा प्रविधि का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ओली ने आज देश के नाम संबोधन करते हुए वैकल्पिक शिक्षा में शामिल होने का सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया। कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी के कारण अवरुद्ध शिक्षण प्रणाली को निरंतरता देने के लिए सरकार द्वारा रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन प्रविधि से पढ़ाई की व्यवस्था मिलाने की बात बताते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वैकल्पिक प्रणाली से सिकाई सहजीकरण के लिए जारी किए गए निर्देशिका को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्कूलों का बंद होने के कारण पूरा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुआ है, इसलिए लॉकडाउन की अवधि भर प्रविधि के माध्यम से ही पढ़ाने की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही अब आने वाली नई जेनरेशन प्रविधि में अभ्यस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में अब किसी भी आंदोलन की जरूरत नहीं है। आज 451 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 6211 पहुंची है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ. जागेश्वर गौतम ने इस बात की जानकारी दी। इसी तरह आज अतिरिक्त 67 लोग डिस्चार्ज होने के बाद नेपाल में कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या की कुल संख्या 1041 पहुंची है। राष्ट्रसभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2077 के विभिन्न शीर्षकों में से भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, अर्थ और संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय सहित 11 मंत्रालय के विनियोजन शीर्षकों के ऊपर विचार विमर्श किया गया। वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में आज से नई अन्य सेवाएं शुरू की गई हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आपातकालीन तथा आपात व्यवस्थापन इकाई स्वास्थ्य आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र ने बीते चैत्र 30 गते नारायण अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषणा करते हुए अन्य सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया था। अस्पताल में इलाजरत कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज होने के बाद ही बहिरंग सहित अन्य नियमित सेवाएं सुचारू की गई हैं। इस बात की जानकारी नारायणी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. मदन कुमार उपाध्याय ने दी है। नेपाली कांग्रेस ने सह महामंत्री डॉ. प्रकाश चरण महत के संयोजकत्व में कोविड-19 अनुगमन समिति का गठन किया है। कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयोजक डॉ. महत ने इस बात की जानकारी दी है। सह महामंत्री डॉ. महत ने कहा कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन की स्थिति में सुधार न लाना और परीक्षण के दायरे को न बढ़ाना सरकार की मुख्य कमजोरी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के थाहै ना। नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवा का अफरहरु सस्तो सारै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *1415 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *1415 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सरकारी कार्यालयों को आज से 2 शिफ्ट में संचालन किया गया है। मंत्री परिषद की गत ज्येष्ठ 28 गते के निर्णय अनुसार सुबह 8 बजे से 1 बजे तक पहला शिफ्ट और 1 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरा शिफ्ट संचालन किया जाएगा। लॉकडाउन की वर्तमान अवस्था में ढील देते हुए सरकार ने सरकारी कार्यालयों, बैंक, वित्तीय संस्थाओं, सहकारी बीमा सेवा, शिक्षण संस्थाओं, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के कार्यालयों का संचालन करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। सातों प्रदेशों की सरकार ने प्रदेश सभा बैठक में आज आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का बजट प्रस्तुत किया है। बागमती प्रदेश सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष 2077 और 78 के लिए 51,47,74,00,000 रुपयों का बजट विनियोजन किया है। प्रदेश सभा की आज की बैठक में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री कैलाश प्रसाद झुंगेल ने चालू आर्थिक वर्ष 26,28,73,35,000 अर्थात 51.12% और पूंजीगत बजट 25,14,01,00,000 अर्थात 48.88% प्रस्तुत किया गया। प्रदेश नंबर एक सरकार ने 40,89,99,00,000 रुपयों का बजट प्रस्तुत किया। इसी तरह प्रदेश नंबर दो की सरकार ने आर्थिक वर्ष 2077-78 के लिए 33,56,09,00,000 का आय व्यय का बजट विनियोजन किया है। इसी क्रम में गंडकी प्रदेश सरकार ने 34,84,21,00,000 रुपयों का बजट विनियोजन किया है। प्रदेश नंबर पांच की सरकार ने 36,35,25,00,000 का बजट विनियोजन किया है। सुदूर पश्चिम प्रदेश की सरकार ने 33,38,13,00,000 का बजट विनियोजन किया है। कर्नाली प्रदेश सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 33,74,13,00,000 रुपयों का बजट विनियोजन किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कैलाली की लमकी चूहा नगर पालिका एक स्थित शहीद स्मारक माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रह रही एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। आयोग के प्रवक्ता वेद प्रसाद भट्टराय ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि घटना में संलग्न दोषियों को जल्द से जल्द कानूनी दायरे में लाना और पीड़ित को उचित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने की उन्होंने मांग की है। इसी बीच नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए क्वारंटाइन में हुए सामूहिक बलात्कार को अत्यंत निंदनीय और गंभीर बताते हुए इसमें संलग्न जिस किसी पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देश के विभिन्न स्थानों में हुई सवारी दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। डोटी की बड़ी केदार गांव पालिका में मिनी ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी केदार से धनगढ़ी की ओर जा रही मिनी ट्रक आज दोपहर बड़ी केदार 3 के सुना लेक में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें 40 वर्षीय डबल बहादुर पुनमगर और उनके 13 वर्षीय बेटे धीरज पुनमगर की मृत्यु हुई है। इसकी जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय टोटी ने दी। इसी तरह भक्तपुर नगर पालिका 10 कमल विनायक भत्के को पार्टी में मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर नाले में गिर जाने से 17 वर्षीय रंजित महाजू की मृत्यु हुई है। इसी तरह भक्तपुर की ही मध्यपुर थीमी नगर पालिका 9 बोड़े में पानी के टैंकर ने स्कूटर को टक्कर दी थी जिस वजह से स्कूटर के पीछे बैठी 45 वर्षीय लक्ष्मी कार्की की मृत्यु हुई। इसी तरह आबो खैरेनी 4 ऐना पहरा में ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक 32 वर्षीय विष्णु परियार की मृत्यु हुई है। इसी क्रम में तनहो के व्यास नगर पालिका में एक ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोग घायल हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित यूरोप में सामान्य जनजीवन की ओर कदम बढ़ना शुरू हो गया है। इसी कवायद में करीब 3 माह बाद सोमवार को पूरे यूरोप में सीमाएं खोल दी गई हैं। हालांकि अब भी कोरोना रोकथाम की कई पाबंदियों को बरकरार रखा गया है। कई यूरोपीय देशों ने भी अपने यहां कारोबारी और सामाजिक गतिविधियों में और राहत दी है। इंग्लैंड में गैर जरूरी दुकानें खुल गई हैं। फ्रांस में पाबंदियों में और ढील देने का ऐलान किया गया है। इटली में मनोरंजन स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है जबकि ग्रीस ने पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। स्पेन ने ऐलान किया है कि वह 21 जून से अपनी सीमाओं को बाकी यूरोपीय देशों के लिए खोल देगा। यूरोप में इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। हालांकि अब इन देशों में नए मामलों में कमी देखी जा रही है। इसके मद्देनजर गत मार्च से लगाए गए पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इसी कड़े में करीब 3 महीने बाद इंग्लैंड में खिलौनों, किताबों और कपड़ों समेत गैर जरूरी दुकानों को भी फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज रेडियो टेलिभिजन र अनलाइन प्रविधि कि वैकल्पिक शिक्षा अभियान का शुभारम्भ सबै विद्यार्थीहरूसे यस अभियानमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह। सातों प्रदेशों की प्रदेश सभा की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का वार्षिक बजट किया गया प्रस्तुत। देशभर में 451 लोगों में कोरोना वायरस की संक्रमण की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 6211 पहुंची और यूरोप में 3 माह बाद खुली सीमाएं, इटली व स्पेन ने भी की गई ऐलान किए कई ऐलान। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।